HD Smartcast। आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन।
हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम शरत है और आपका दिल से स्वागत करता हूं बाउंस बैक भारत के सेकंड सीजन में। और इस बार का पॉडकास्ट पिछले पॉडकास्ट से भी कमाल है। देखिए, इस कोविड ने हम सबको एक ऐसे सिचुएशन में डाला, एक ऐसी स्थिति में डाला जहां से हम सब बाउंस बैक करना चाहते हैं और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। लेकिन जो हमारी जर्नी है वो इतनी आसान नहीं होने वाली। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े दिग्गजों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। सो वी क्रिएटेड द बिगेस्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटीज, OTT स्टार्स, स्पोर्ट्समैन, बिजनेस लीडर्स। इंडिया का हर बड़ा आइकन इस प्लेटफॉर्म पे आ गया है एंड दे आर टेलिंग अस हाउ दे बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। है ना इंटरेस्टिंग? तो शुरू करें सिलसिला बाउंस बैक भारत का। तो बाउंस बैक भारत में हमने बहुत सारे लोगों से ये कहा कि पंकज भाई आ रहे हैं, आप अपने सवाल पूछिए, अपने अपनी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछिए, अभी जो आपकी यात्रा है इसको आगे कैसे लेके जाएं, पंकज भाई से पूछेंगे क्योंकि उन्होंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखा है और वहीं से कुछ इंस्पिरेशन, कुछ पॉजिटिविटी मिलेगी। तो मैं कुछ हमारे लिसनर्स के सवाल आपसे पूछ रहा हूँ।
जी बिल्कुल।
तो पहला जो है वो अखिलेश का सवाल है। अखिलेश अपने थोड़ी सी जर्नी आपके साथ शेयर करना चाह रहे थे। कह रहे थे कि मेरे को अभी इस दौरान 3 महीने पहले मेरे को जॉब से निकाल दिया गया, बड़ी बेइज्जती के साथ निकाला। पर्सनल बातें मेरी बॉस ने कही। मुझे ये पता था कि उनको बेसिकली लोगों को नौकरी से निकालना था, बहाना चाहिए था, तो वो मेरे पे बरस पड़े। उन्होंने मेरे को बड़ी पर्सनल बातें कही, दिल में बहुत चुभी और बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने ये बातें कही। तो वो आपके बहुत बड़े फैन है। उन्होंने कहा कि मेरे को पंकज भाई का एक इंटरव्यू जो है वो मैंने देखा, जहां पे उन्होंने बताया कि करियर की शुरुआत में एक्शन कोई सीन था आपका और उसमें किसी ने बड़े आपके साथ बुरे तरीके से व्यवहार किया, लेकिन आपने उस गुस्से को बहुत अलग तरीके से यूज किया और 8 साल बाद उन्हीं ने तारीफ की आपकी। तो अखिलेश जी का रिक्वेस्ट था कि अगर पंकज सर उस इंसिडेंट को फिर एक बार बताएं और ये भी बताएं कि गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि इस वक्त मैं अपने गुस्से को काबू नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है वो मुझे ही खाक कर देगा गुस्सा, बार बार उसका चेहरा याद आ रहा है, मन कर रहा है मुंह फोड़ दूं बॉस का। तो अपने फ्यूचर पे फोकस नहीं कर पा रहा, तो आपने कैसे हैंडल किया उसमें उन्हें मदद मिल जाएगी। उनका नाम अखिलेश है, अगर आप उनका नाम लेके जवाब दें।
जी जी बिल्कुल। अखिलेश जी, जब आपको ये किस्सा पता ही है तो किस्सा दोहराने का कोई मायने नहीं है, अर्थ नहीं है, आप जानते हैं। वो किस्सा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जिंदगी में ऐसे कई बार मौके मिलते हैं जहाँ की हमें जेन्युइनली लगता है कि हम सही हैं, पर सामने वाला क्यों हमें मतलब इतना ह्यूमिलिएट कर रहा है, हमारे स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है। और कई बार हम लोग वो आत्मसम्मान, स्वाभिमान और ईगो में अंतर भी नहीं कर पाते हैं, तो कई बार वो आत्मसम्मान नहीं, ईगो भी होता है हमारा। तो अभी मैं लेह में था पिछले हफ्ते और मेरी पत्नी भी थी, तो उन्होंने वहाँ एक कोट देखा, हालांकि बहुत पॉपुलर कोट है वो बुद्धिज्म का, कि भाई क्रोध का मतलब कि आपने जहर पिया और सोच रहे हैं कि मरे दूसरा। तो क्रोध तो वो चीज है कि आपने स्वयं विष्पान किया है और सोच रहे हैं कि नुकसान दूसरे का हो, पहला नुकसान आपका होगा क्रोध करके, कुछ अचीव होने वाला नहीं है। आप उस क्रोध को ऊर्जा बना लीजिए, एनर्जी बना लीजिए, आप अपने अपने पैशन को लेके, अपने काम को लेके, कि मैं अपने फील्ड में इतना स्किल्ड हो जाऊंगा, इतना बेहतर करूंगा कि मुझे वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति देखेगा तो मैं एग्जांपल सेट करूं। और एक और चीज है, हम अपने फील्ड में, मैंने बोला आपने, इतना स्किल्ड हो जाऊंगा, पारंगत हो जाऊंगा अपने फील्ड में। हम में से ज्यादातर लोगों को, हम पढ़ना चाहते थे आर्ट, हमें पढ़ा दिया गया साइंस, हम बजाना चाहते थे,
वाह
ये देखो ये इंस्ट्रूमेंट जो है ना ये बहुत शांति देता है, सुकून देता है, बड़ा मेडिटेटिव साउंड है इसका।
गजब है।
तो हम बजाना चाहते थे इंस्ट्रूमेंट और हम करने लगे बैंकिंग की नौकरी। यस, बैंकिंग की नौकरी इंस्ट्रूमेंट दोनों साथ चल सकता है, और बैंक कई लोगों को बैंकिंग की नौकरी ही करना चाहते थे। ऐसा नहीं है कि 9 to 5 बिल्कुल बुरा है, नहीं जी, बहुत लोगों का मन होता है, उसी में उनका मजा है। तो मेडिटेशन ध्यान का मजा तब है जब आप चौराहे पे करें, जब आप दफ्तर में करें, जब शोरगुल के बीच में करें। ध्यान करने के लिए माउंटेन पे जाने की जरूरत है नहीं। रेडियो चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, मेडिटेशन भी चल रहा है, सब हो रहा है।
तो अक्सर हम बहाना ढूंढते हैं कि जब ऐसा होगा तब करूंगा।
हाँ हाँ हाँ, कि मौसम ठीक हो जाए तब करूंगा। कुछ नहीं है, देखो क्या होता है, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे लोगों के संगत में रहेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। और क्रोध अंतोगत्वा आप ही का नुकसान करेगा, कहीं नहीं जाना आना है। सो कभी भी कभी जिंदगी में ऐसे मौके आए तो उस क्रोध को जो है अच्छे स्वरूप में FD बना ले और बोले कि इसके इंटरेस्ट से आगे का जीवन चलाऊंगा मैं।
क्या बात है, क्रोध का FD, वाह वाह, क्या बात है।
अच्छे स्वरूप में
बहुत गजब, क्या बात है, क्या बात है। अगला सवाल दीप्ति का है। दीप्ति कहती है कि मैं ना खुद की मार्केटिंग नहीं कर पाती, उससे मेरे से होता नहीं है। कंपनी में काम करती है, ईमानदारी से मैं काम करती हूँ और नोटिस नहीं होती, कोई किसी को पता नहीं चलता कि मैं मेहनत कर रही हूँ, लेकिन मैं उसमें लगी रहती हूँ, फ्रस्ट्रेशन होती है कई बार। आपके एक इंटरव्यू से वो बहुत टच हुई, जहां पे आपने कहा कि मैं फोकस में हूं या ना हूं, मैं हर रोल में बड़ी ईमानदारी से निभाता हूं। तो इसके बारे में थोड़ा और वो आपसे सुनना चाहते हैं, कैसे आप इस चीज को।
किस्सा मतलब मैं ऐसे ही किस्सा याद आया, हम फिल्में करते हैं कई बार, तो एक स्पोर्ट्स की फिल्म थी जिसमें पूरा ग्राउंड था, तो सारे प्लेयर्स और एक्टर्स दूर दूर थे, तो कैमरा यहाँ लगे तो जो सबसे दूर खड़ा है बाउंड्री लाइन पे, वो बोला यार मैं तो बहुत दूर हूँ, कैमरा पता नहीं मुझे देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है। तो मैंने उस एक्ट्रेस को बोला कि भाई एक कैमरा ये है जो हमें रिकॉर्ड कर रहा है, और एक कैमरा उधर है जो उस कैमरे को भी और हमें भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो आप छोड़ दीजिए, आप न्यूटन में एक लाइन था कि वो बोलते हैं संजय भैया न्यूटन को कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बोलता है ईमानदारी, बोलता नहीं ईमानदारी का घमंड।
वाह,
कि तुम अपना काम कर रहे हो, चाहते हो उसके लिए लोग तुमको रिस्पेक्ट भी दें, तो आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हो ना, वो आपका बॉस देखे ना देखे, आपका जो ये बॉस होता है ना, हमारे दो बॉस होते हैं, एक बॉस होते हैं हायरार्की में ऑफिस के बॉस, और दूसरा एक बॉस होते हैं जो हमारा आत्मा है, परमात्मा है, हमें मालूम है कि हम सही कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम चल रहा, चल जाएगा, एक साल बाद चलेगा, या जिस दिन वो कंपनी छोड़ के कहीं और जाएंगे तब पता चलेगा कि दीप्ति तो बहुत अच्छी थी यार, क्योंकि जब जो होता है उसकी कीमत उस समय नहीं होती है। तो ईमानदारी से काम करते रहो, और वो उसका एक्चुअल रिवॉर्ड है, जो खुशी मिलती है ना वो है।
तो अंजलि का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। अंजलि दिल्ली में एक इवेंट प्लानर है और कह रही है कि आप ही की तरह मैं एक छोटे शहर से आई और आज दिल्ली में मैं काम अच्छा कर रही हूं, और मेरी मेरी जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं बहुत जल्दी लोगों को अपना गुरु मान लेती हूं और उनके काम से इन्फ्लुएंस हो जाती हूं, फिर मैं अपनी सोच छोड़ के उनके जैसा करने लगती हूं और फिर मेरे को दिक्कत आने लगती है। कह रही है आपके जीवन में मैंने ये देखा कि आपने मनोज वाजपेयी को अपने गुरु की तरह दर्जा दिया, एकलव्य की तरह आपने वो चप्पल की कहानी सबको बताया, सब जानते हैं उस कहानी को, लेकिन जो मिर्जापुर में आप डॉन बने और जो भीकू मात्रे थे वो दोनों अलग थे, तो आप इन्फ्लुएंस नहीं हुए उनसे, लेकिन आपने वो भाव रखा। तो मैं अक्सर इसमें स्ट्रगल करती हूँ कि भाव तो जब इतना हो जाता है कि मैं अपनी यूनिकनेस, अपनी इंडिविजुअलिटी खो देती हूँ। तो अंजलि को इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
हाँ ऐसा, अंजलि आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऐसा लग रहा है मैं कुछ क्या बोलता हूँ उसको, स्पिरिचुअल गुरु हूँ और मैं सबकी जिंदगी की समस्याओं को सुलझा रहा हूँ। तो अंजलि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने आपके सवाल में भी आंसर था कि इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन इंस्पायर होकर गुरु की तरह ही करने लगेंगे तो मार्केट में ऑलरेडी वो गुरु है और आपसे ज्यादा लोग उसको जानते हैं, तो फिर कोई अर्थ नहीं है। आप इंस्पायर हो लेकिन इंस्पायर होने का मतलब अपनी मौलिकता खोजना, मौलिकता इन द सेंस ओरिजिनलिटी खोजना, कि गुरु आपको मैप दिखा सकता है, उस मैप पे जर्नी आपको करनी है, तो उस जर्नी में आप कहाँ स्टॉपेज लेंगे, कहाँ नाइट हॉल्ट होगा, कहाँ ब्रेकफास्ट होगा, वो आपको तय करना है। तो इंस्पायर जरूर हो, लेकिन गुरु की तरह करने लगेंगे तो फिर तो गुरु जी ऑलरेडी मार्केट में है और बड़े ब्रांड के रूप में है आपसे, तो फिर तो बात बनेगी नहीं, आपकी ओरिजिनलिटी कहाँ गया। गुरु जो गुरु होता है, गुरु वैसा है ना कि हम शिष्य बतौर शिष्य उसके पास अगर जाते हैं, लिटरली फिजिकली मिलते हैं, तो हम गीली मिट्टी होते हैं, वो हमें शेप दे देता है। तो आप इंस्पायर हो, गीली मिट्टी बने, बट उनका उनकी तरह ही ना करें, नहीं तो गुरु जी तो है ही, अपना ओरिजिनल खोजें।
इसमें मनोज भाई एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अक्सर जब हम कोई काम देखते हैं और उससे बिल्कुल ओवरवेल्म हो जाते हैं, तो कई बार ऐसे लगने लगता है कि जैसे हम थोड़े छोटे हो गए उस काम को, की भव्यता देख के, उसकी काबिलियत देख के, कभी कभी अपने आप पे कॉन्फिडेंस हिलने लगता है कि यार ये तो कितना बड़ा काम है। मैं तो ये आपने कभी महसूस किया अपने जीवन में?
और आपका और कुछ बचा था?
तो जब ऐसा महसूस होता है तो किस तरीके से अपने आप को वापस समेट कर अपने काम की तरफ बढ़ाए, क्योंकि कई बार कॉन्फिडेंस हिल जाता है बहुत अच्छा काम देख के, ईर्ष्या से ज्यादा कॉन्फिडेंस टूट जाता है।
हाँ, यस यस, बहुत बढ़िया। नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं टूटता है। मैं इंस्पायर होता हूँ कि अगर इस अभिनेता ने, इस स्टोरी टेलर ने, इस राइटर ने इस किस्म की कहानी को ब्रेक थ्रू किया है, लिखा है, क्रिएट किया है, गढ़ा है स्क्रीन पे, तो ऐसा क्या मेरे अंदर मिसिंग है कि मैं इतना इम्पैक्ट इतना बढ़िया नहीं कर सकता हूँ? तो वो कॉन्फिडेंस न हिला के मुझे ज्यादातर सेल्फ एक्सप्लोरेशन मोड पे डाल देता है कि खोजो, डीप डाउन जाओ कि तुम कहाँ लैग कर रहे थे, कि तुम इस किस्म का काम नहीं सोच पाए, नहीं कर पाए। सो मुझे ईर्ष्या नहीं होती है, क्योंकि अभिनय देखो, अभिनय क्या है ना, कोई 100 मीटर का स्प्रिंट है नहीं कि जो 8 मिनट में दौड़ गया वो दुनिया का बेस्ट एक्टर है, क्योंकि आर्ट फॉर्म का कुछ भी एक पैरामीटर नहीं होता कि ये बेस्ट आर्ट है। हाँ, हम लगातार सीख रहे होते हैं, एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो मुझे वो चीजें इंस्पायर करती हैं कि और एक्सप्लोर करो और पढ़ो, और तुम्हें जानने समझने की जरूरत है, तुम्हारी समझ कम है, देखो इसने कितना सुंदर चमत्कार किया। यही
क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल जो है वो रमेश अग्रवाल का, गंज बसौदा से है ओरिजिनली, एमपी गंज बसौदा। कह रहे हैं मैंने आपकी सारी फिल्में देखी है, एक एक काम देखा है, कह रहे हैं, और ये जब मुझको ये रेडियो पे पता चला कि मैं सवाल पूछ सकता हूँ और अपनी जिंदगी से रिलेटेड सवाल पूछ सकता हूँ, तो बड़े डर डर के ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। मेरे लखनऊ में मैं एक प्लांट सुपरवाइजर हूँ, सुपरवाइजर था लखनऊ में, मैं एक प्लांट सुपरवाइजर था, 300 लोगों की रिपोर्टिंग थी और बड़ा रुतबा था मेरा। एकदम से कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया मुझे, और आज मैं खुर्जा करके एक जगह यूपी में है, मैं नहीं जानता हूं,
मैं जानता हूं,
खुर्जा करके एक जगह में एक छोटे प्लांट में डाल दिया मुझे। अब 300 की जगह अब 10 लोग हैं बस मेरे अंडर, तनख्वाह उतनी है लेकिन रुतबा घट गया, तो रोल जो है अब बहुत छोटा हो गया। मुझे मालूम है मैं काबिल आदमी, लेकिन रोल अब ऐसा मिल गया कि बहुत गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन भी आ जाती है। तो आपके जीवन में मैंने ये देखा कि आपने छोटे बड़े रोल को बहुत अच्छी तरीके से निभाया, तो आपने अपने आप को कैसे समझाया? क्योंकि आपको यही लगता होगा कि मैं बहुत काबिल हूं, कर सकता हूं उससे बेहतर, तो जब छोटा काम मिलता है तो आप कैसे संभालते हो अपने आप को? इनका नाम है रमेश अग्रवाल।
पिछले रमेश जी नमस्ते आपको, और ईश्वर करे आपका रुतबा बना रहे। रुतबा लोगों से नहीं होता है, आप 300 लोग आपको रिपोर्ट करते थे कि 10 लोग करते थे, तो अगर एक भी चेला कामयाब निकले और अच्छा चेला मिले तो गुरु काफी है, फॉलोअर से गुरु का लेना देना कुछ नहीं होता है। तो रुतबा का भी नंबर से कोई लेना देना नहीं है, हम बड़े या छोटे सिर्फ अपनी नजरों में होते हैं। उन 300 लोगों में से हो सकता है कि 280 लोग सिर्फ इसलिए आपको रिस्पेक्ट देते होंगे क्योंकि आप उनके बॉस थे। तो हृदय से, दिल से अगर 2 लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, वो 2000 से ज्यादा है।
क्या बात।
तो ये रुतबा उतबा कुछ नहीं होता। रुतबा होता है कि अंतों का, तो आपको सुकून मिलना चाहिए। आप संसार से झूठ बोल सकते हैं, स्वयं से नहीं बोल सकते हैं। तो रुतबा कुछ नहीं है। आपने देखा है नेचर को रुतबा मांगते हुए, पेड़ पौधे बोलते हैं कि मेरा रुतबा है, मैं ऑक्सीजन प्रोवाइड करता हूं तुम लोगों को। नहीं, उनका काम है करते रहना, तो आप अपना काम करते जाइए। एक डायलॉग था मेरा उसमें क्रिमिनल जस्टिस में, उसको अवार्ड भी मिला है कल को, एशियन अवार्ड कुछ मिला है। कि हैसियत का क्या है, बनती है तो बिगड़ती है तो बन भी जाती है, मैं एक कैरेक्टर को बोलता हूँ। तो वही है कि द्रोणाचार्य के बहुत शिष्य थे, लेकिन हम कहानियों में चर्चा एक लव्य का करते हैं जो उनका शिष्य भी नहीं था, जो दूर से देख के सीख रहा था। तो आनंदित रहे अग्रवाल साहब।
क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ऋत्विक जो है सोशल मीडिया में इन्फ्लुएंसर है।
अरे वाह,
कहना उन्होंने कहा पंकज भाई को कहिएगा कि ब्लू टिक भी है और छोटे शहर से आया हूँ, आज मैं बंबई में ठीक ठाक काम कर रहा हूँ। अरे 10,000 फॉलोअर हैं लेकिन ब्लू टिक मिल गया, बड़ी वो एक बहुत बड़ी मेरी उपलब्धि है। कह रहे उनको छोटा लगेगा लेकिन मेरे लिए बड़ी बड़ी चीज है। कह रहे फॉलोअर जब मेरे बढ़ने लगे तो मेरे को अच्छा लगा, लेकिन साथ में एक और चीज आ गई कि ईर्ष्या बढ़ने लग गई लोगों से, लोगों का काम देख के। पहले मैं बड़ा सहज था, कोई दिक्कत नहीं होती थी, अपने इत्मीनान से अपना कंटेंट बनाता था। अब ईर्ष्या होती है, ठहराव खत्म हो गया, सहजता खत्म हो गई, अब मैं बड़ा दुविधा में रहता हूँ। कह रहे आपका काम देखता हूँ, आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं आप उतने ही सहज हैं, आप उतने ही इंटरव्यू आराम से देते हैं, आपके रोल में ठहराव दिख रहा है। तो ये मेरे को तो अभी कुछ भी फेम नहीं मिला और मेरे अभी हालत खराब हो रही है, तो आप इसको कैसे हैंडल करते हो?
मैं तो कुछ हैंडल नहीं करता हूँ गुरु। वो क्या है ना कि आप तय आपको करना है कि आप मतलब आप कैसा जीवन और कैसा आप स्वयं को किस तरह देखना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। कि 10 लाख की गाड़ी में बैठा हुआ बंदा 20 लाख की गाड़ी वाले से परेशान हो जाता है, ईर्ष्या करने लगता है। 20 लाख वाला जो है 50 लाख वाले से दुखी है, तो उसका तो कोई लिमिट नहीं है ना। कि हम सारी भौतिक चीजें मटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठी कर ले तो भी कम लगेगा, उसके इतना तो नहीं हुआ। तो हमने शुरुआत में बात की कि 10,000 फॉलोअर से बढ़िया ढंग के 2 फॉलोअर भी काफी है जो आपकी राय आपकी बात को समझ लें।
सही बात है।
तो नंबर्स के चक्कर में उलझेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, हमेशा हम कम ही लगेगा कि यार ये तो 15 मिलियन वाला हमसे बहुत बड़ा है गुरु, हम तो कुछ नहीं है। आप क्या करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नंबर्स वंबर्स तो मिथ्या है। तो वो है कि सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग आप मत चलो, आप सोशल मीडिया को अपने अकॉर्डिंग चलाओ। तो आपके 10,000 फॉलोअर हैं तो बाकियों के से तुलना मत करो, आपको कैसा कंटेंट बनाना है, क्या बनाना है, जिंदगी में क्या चाहते हो उस पर फोकस करो। क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, तो क्वांटिटी से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, गुणवत्ता होनी चाहिए।
क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, आपने बहुत बहुत कमाल की बातें कही और हमारे लिसनर्स को बहुत इससे बेनिफिट मिला होगा इस बात से। जाते जाते जो भी लोग ये बाउंस बैक भारत में ट्यून इन करेंगे, ऐसे लोग जिनके जीवन में अलग अलग घटनाएं हुई इन कुछ महीनों में, किसी ने अपनों को खोया, किसी ने अपनी जॉब को खो दिया, किसी ने किसी की पे कट्स हो गई, हर किस्म की तकलीफों से लोग गुजरे हैं इस दौरान, और ऐसे ही लोग सब जुड़ रहे हैं एक साथ और एक दूसरे से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो उन लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा इस भारत के बाउंस बैक में, अपने पर्सनल बाउंस बैक में वो कैसे कैसे अपने जीवन को आगे लेके जाएं, कुछ बातें आपकी तरफ से?
हम देखो क्या है ना कि हम हर इंडिविजुअल अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहा है ना, तो हमारी फिल्म में एक लाइन था कि वो देश को आगे बढ़ा रहा है। देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सेपरेट कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ धक्का देने का। आपकी जो ड्यूटी है, जो जिम्मेदारी है, उसको आप बहुत ही ईमानदारी से अगर आप आरजे हैं तो आप चाहे आप ये अटेम्प्ट जरूर करते होंगे कि आप एंटरटेनमेंट के संग संग आपके जो लिसनर हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनको आप एनरिच भी करें, उनकी जिंदगी में उनके थॉट प्रोसेस में भी थोड़ी वृद्धि हो आपके कार्यक्रम को सुन के। तो मेरा वही मानना है, यस कठिन दौर रहा है, हम सबने ये कोविड के और महामारी के दौर में, मुझे नहीं लगता कोई भी परिवार, कोई भी इंडिविजुअल होगा जो इससे बिल्कुल अछूता होगा। सेकेंड वेव में जिसके घर के आसपास कोई ना कोई दुर्घटना घटना किसी अपने को नहीं खोया हो, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी हुआ है, बट यही तो मतलब जीवन है कि ठीक है, अब जो हुआ हम बाउंस बैक करते रहते हैं अपनी जिंदगी में। हमारा वेट वजन बढ़ जाता है तो हम तय करते हैं कि अगले महीना से खाने पे कंट्रोल, वर्जिश कसरत चालू, बाउंस बैक तो हमारा नेचर है। इसीलिए हम बाकी एनिमल से अलग है कि हम बाउंस बैक करते रहते हैं और बाकी एनिमल नेचर के साथ चलते हैं, हम नेचर के बियॉन्ड जाते हैं, इसलिए हमें बाउंस बैक बार बार करना पड़ता है क्योंकि हम कई बार नेचर के बनाए रूल को तोड़ते हैं। तो जिंदगी यही है कि पीड़ा होगा, नुकसान होगा, दुख होगा, बट उसको आगे बढ़ाना है, संभलना है, अपने आसपास को संभालना है, एक दूसरे को बल देना है। और अद्भुत चीज है मतलब दो लोग बैठ के एक दूसरे की आंखों में भी ध्यान से कुछ देर देख लेना तो एक हीलिंग हो जाती है, आपकी ऊर्जा उस सामने वाले तक पहुंच जाती है। तो एक एक ह्यूमन टच कमाल की चीज है। हमें कोई सहला देता है ना तो एक अलग ऊर्जा मिलती है उसमें। तो जो हमारे सेंसेस हैं, मैं अपने लिसनर को बोलूंगा इस कठिन दौर में बाउंस बैक करना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने सेंसेस को डेवलप करें, वो टच का, स्वाद का, देखने का, सुनने का। भागा भागी में हम सेंसेस खोते जा रहे हैं, तो हम सेंसेस को अवेयर करेंगे, जागृत करेंगे तो सेंसिटिव बनेंगे, सेंसिटिव बनेंगे तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी जो पिछले 20 मिनट से हम बातें कर रहे थे। तो बतौर एक्टर हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, हमारा टूल्स है हमारे सेंसेस। मैं सुनूंगा नहीं, मैं देखूंगा नहीं, मैं चखूंगा नहीं, मैं टच का एहसास नहीं लूंगा तो मैं परफॉर्म नहीं कर सकता। मेरे लिए अभिनय सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने और पॉपुलर होने का मीडियम नहीं है, मेरे लिए अभिनय मेरे सेंसेस को डेवलप करने का और शार्प करने का भी एक मीडियम है, भी बोल रहा हूँ। बैंक पैसा नाम दाम वो भी है, पार्ट ऑफ द जॉब है, वो हो जाता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा किरदारों को करते हुए हम खुद को ढूंढ रहे होते हैं, हम अपने सेंसेस को माज रहे होते हैं कि ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं, कर्कश होती है, एक मधुर होती है। तो हमें मालूम ही नहीं है कि हम दिन में कितना कर्कश और कितनी मधुर ध्वनि सुनते हैं। आज का प्रवचन समाप्त हुआ, नमस्कार।
ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और अपडेट्स चाहते हैं, तो रीच आउट कीजिए ना हमें। देखिए, फीवर FM ऑफिशियल इज आवर हैंडल, और HT स्मार्टकास्ट, ये दो हैंडल हैं जो आपके काम के। हम FB पे हैं, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, क्लब हाउस पे हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो मुलाकात होती है अगले एपिसोड में, और आप और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अगर सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन टू htsmartcast.com और सुनिए नए नजरिए से। बाय बाय।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HT Smartcast।